यदादित्यगतं तेजो जगत् भासयते अखिलम् यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो बुद्धिमामकम् यदादित्यगतं तेजो जगत् भासयते अखिलम् यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो बुद्धिमामकम्। यदा आदित्य गतम तेजो, जिसके द्वारा सूर्य के अंदर विद्यमान तेज है और फिर सूर्य के तेज से जगत भासते अखिलन, सारा जगत प्रकाशित होता है। सूर्य के प्रकाश से तो सारा जगत प्रकाशित हो रहा है, लेकिन सूर्य किससे प्रकाशित हो रहा है? जिससे प्रकाशित हो रहा है। अब ये उस परमात्मा को बताते हैं कि उस परमात्मा की उपासना करो। ये बात आती है कि देखो ये परमात्मा की यत्न क्या है, उपासना करो। उपासना कैसे करो? पहले उस परमात्मा का ज्ञान। शास्त्र बताता है कि परमात्मा कैसा है, ये हुआ ज्ञान। ये ज्ञान सहायक होता है उपासना में। उपासना के माने क्या है कि जैसा ज्ञान है उसी प्रकार से परमात्मा का स्मरण करो। अब उपासना जो चलती है, पहले स्थूल होती है फिर उसके बाद सूक्ष्म होती जाती है। जैसे वो सूक्ष्म होती जाती है तैसे वो विज्ञान का रूप धारण करती जाती है और परमात्मा को प्राप्त करा देती है। इसलिए अब आप देखोगे कि यहाँ वर्णन चलता है परमात्मा का उपासना के लिए कि परमात्मा कैसा है वो बताते जाते हैं, और फिर स्थूल से सूक्ष्म तरफ होते जाते हैं, बाहर से अपने अंदर की तरफ होते जाते हैं, और फिर धीरे धीरे करके अपने हृदय में पहुंच करके उस परमात्मा को खोजने के लिए कहते हैं। यहाँ भी क्रम है, उपासना में भी क्रम है। पहले बाहरी उपासना फिर आंतरिक उपासना। आचार्यों ने तो वैसे उपनिषदों इत्यादि को देख करके और ब्रह्मसूत्र आदि को देख करके ये जो प्रारंभिक साधना यदादित्य गतम तेजो, वहीं पर उन्होंने उसको आदि भौतिक और आदि दैविक और आध्यात्मिक बना दिया है, कहते वहीं से। लेकिन अगर उसको उस प्रकार से न भी बनाने तो इतना तो देखें कि पहले सूर्य को देखें और सूर्य को देखें, ये भी देखें सारा जगत को कितना प्रकाश सारे जगत में फैला हुआ। देखो एक सूर्य के कारण तो फैला हुआ, तो सूर्य में कितनी सामर्थ है जैसे सारे जगत को प्रकाश कर रहा है। अब ये देखो कि सूर्य को जो प्रकाश प्राप्त हो रहा है, क्या सूर्य का अपना प्रकाश है? तो भौतिकवादी तो यही कहेंगे कि सूर्य का अपना प्रकाश है। सूर्य में इतना अपना प्रकाश कैसे है जितना प्रकाश वो देता भी रहे बना भी रहे? दुनिया में कम से बिजली आती खत्म हो जाती है, मिट्टी के तेल लाते हैं खर्च हो जाता है, पेट्रोल लाते हैं खर्च हो जाता है, ये सब जितने साधन प्रकाश करने के हैं वो सब खर्च होते रहते हैं, खत्म खत्म खत्म। लेकिन सूर्य का प्रकाश बराबर आ रहा है, खत्म क्यों नहीं हो रहा है? इतने दिन क्यों हो गए? एक दूसरा प्रश्न आ गया। जब आ गया तो वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि भाई सूर्य के भीतर ये, और जब विस्फोट होता तो बहुत भयंकर इतनी तेज ज्वाला प्रकाश उस सूर्य में उत्पन्न होता रहता है, उसके भीतर ये गति चल रही है विस्फोटक क्रिया। ये लोगों ने कब हिसाब लगाया? जब हिरोशिमा नागासाकी जल करके ध्वस्त हो गए, तब उनको पता लगा कि देखो एटम बम में कितनी तेज आग होती है और कितना प्रकाश फैलता है। तब उन्होंने कहा बस ऐसे ही होता होगा सूर्य में भी, सूर्य के भीतर भी उसी प्रकार कार्य हो रहा। यहां तक उन्होंने सोच लिया, लेकिन उसके बाद में बात आई कि भाई सूर्य में जो इस प्रकार से एटम विस्फोटन कार्य होता रहता है, इसकी रचना किसने की, कैसे ये बना? अरे कार्य तो अपने आप, अपने आप कैसे हो सकता है? जैसे कहीं पंखा क्या चल रहा है, अरे अपने आप चल रहा है, अपने आप कैसे चल सकता? अपने आप चल रहा है, दूसरा कौन चल रहा है? अपने आप नहीं चलता, इसके भीतर कोई और बैठा हुआ है जो इसको चलाता है। ऐसे सूर्य के भीतर कोई और बैठा हुआ है जो सूर्य को इस प्रकार से संचालित कर रहा है, इतना प्रकाश इसके कारण उत्पन्न हो रहा है, इतना तेज उत्पन्न हो रहा है। ये उपासना है। उपासना के माने, उपासना मैंने सदा आंखें बंद करके बैठे नहीं, उपासना के माने मालिक जपते रहना नहीं। आप यही ध्यान कर अभ्यास डालते रहो कि गीता में भगवान ने बताया है कि इस सूर्य के भीतर वो स्वयं बैठे हुए हैं और अपनी शक्ति से इस सूर्य को संचालित कर रहे हैं, इसमें प्रकाश उसको दे रहे हैं, इसको ताप दे रहे हैं,
ये सूर्य की जो महिमा जो हुई है भगवान की महिमा के कारण से है। अब सूर्य में तीन चीजें हो गई, एक आधिभौतिक सूर्य, एक आधिदैविक सूर्य और तीसरा आध्यात्मिक। ये जो अपने जितने उपनिषद हैं उन्होंने इनको तीन भागों में बांट रखा है, आधिभौतिक, आधिदैविक और आध्यात्मिक। कभी कभी विद्वान लोग जब व्याख्या करते हैं, जैसे गीता की व्याख्या करेंगे, रामायण की व्याख्या करेंगे, उपनिषद की व्याख्या करेंगे, तब कहेंगे देखो तीन प्रकार की व्याख्याएं हैं, कोई इसकी आधिभौतिक व्याख्या करता है, कोई आधिदैविक व्याख्या करता है, कोई आध्यात्मिक व्याख्या करता है। जो आधिभौतिक व्याख्या करते हैं वो स्थूल व्याख्या उसके करते हैं, वो कहेंगे कि देखो अपने उपनिषदों में धनुष बनाने का तरीका लिखा हुआ है, बाण बनाने का तरीका लिखा हुआ है, और ये भी लिखा हुआ है कि धनुष के ऊपर बाण कैसे रखना चाहिए और कितना खींचना चाहिए और फिर बाण छोड़ना चाहिए तो कैसे मन को एकाग्र रखना चाहिए, ये उपनिषद में लिखा हुआ है। तो कोई तो ऐसा ऐसा निकालेगा उसमें और दिखा देगा उसको, इसको मिल भी जाएगा, लेकिन उसके बाद में कोई दूसरा कहेगा कि नहीं, अब धनुष मनुष्य तो ऐसा कोई भी बना लेगा और उसको बनाने के लिए उपनिषद को लिखने की क्या जरूरत है। असल में है जो उसमें ये बताया गया कि देखो धनुष के समान अपना मन है, अपनी बुद्धि है, इनको धनुष बनाओ, इनको धनुष बनाने के लिए उसमें लिखा हुआ है, और फिर अपने मन को एकाग्र करके परमात्मा की तरफ लगाओ। अब दूसरा अर्थ जो आया वो आधिदैविक अर्थ आया, अपने मानसिक अर्थ आया कि मन कैसा बनाओ, बुद्धि कैसी बनाओ, और फिर उसके बाद में आया मन बुद्धि जो शुद्ध होंगे तो कहाँ पहुंचेंगे कि परमात्मा का लक्ष्य बनाओ, उसी परमात्मा को प्राप्त कर लो, तो वो हो गया आध्यात्मिक। इस प्रकार से तीन तीन अर्थ करके आचार्यों के अर्थ चलते रहते हैं, तीन स्तर के अर्थ हैं, नीचे का, मध्य का, ऊपर का। उपासना भी ऐसे नीचे की उपासना, मध्य की उपासना, ऊपर की उपासना। सूर्य को देखो और सूर्य को सूर्य मात्र देखो कि सूर्य कितना शक्तिशाली है, सारे जीवन का, लोगों को, सब प्राणियों का जीवन सूर्य के ऊपर निर्भर है, ये सारी पृथ्वी का इतना सब का सब जो जीवन दिखाई देता है, रचना दिखाई देती है, सब सूर्य के ऊपर निर्भर है, सूर्य की बड़ी महिमा है। ऐसे सूर्य की महिमा को देखो तो ये आधिभौतिक बात हो गई, लेकिन जब ये देखो कि सूर्य इस प्रकार से ऐसा है तो क्यों ऐसा है, इसके भीतर इसका संचालक शक्ति कौन है, तो बोले सूर्य के भीतर एक और सूर्य है, हाँ? वो आधिदैविक सूर्य है। वो कौन है? वो सूर्य देवता है। इस सूर्य के बाहर, ये तो सूर्य का बाहरी शरीर है, इस बाहरी शरीर के भीतर एक सूर्य देवता है, वो देवता है जब तक विद्यमान है सूर्य में तब तक ये सूर्य प्रकाश दे रहा है। जैसे कि जब तक जीव शरीर में होता है तब तक ये शरीर नाना प्रकार की लीलाएं करता रहता है, बोलता, चलता, खेलता, हंसता, गाता, घूमता रहता है, और जहां इसमें से निकल गया जीव तो उसके बाद शरीर कुछ नहीं करता। तो जैसे शरीर में जीव, इसी प्रकार से सूर्य में सूर्य देवता। तो सूर्य देवता के बिना सूर्य कैसे प्रकार है? और फिर देखो जब यहां तक बात समझ में आ जाए तो सूर्य देवता के पीछे भी सूर्य देवता कौन, के एक परमात्मा है जो सूर्य देवता में भी है, चंद्रमा में भी है, तारों में भी है, ईश्वर में भी है, मनुष्य में भी है, अन्य अन्य जगह भी है। वही परमात्मा, एक परमात्मा सूर्य देवता होकर के सूर्य में विद्यमान है। इस प्रकार से देखो, इसलिए कहते हैं कि उपासना करें में पहले तो देखो सूर्य को, फिर सूर्य में विद्यमान सूर्य देवता को, और सूर्य देवता जिस परमात्मा के जो परम देव है वो परमात्मा का ही एक अंश है, उसी का एक रूप है, इस प्रकार से देखो। ऐसे देखने से आपके धीरे धीरे करके ज्ञान में तो खुलेंगे, आप मालूम हो न मालूम हो, अगर ये अभ्यास आपने किया तो आपके ज्ञान के नेत्र खुलने लगेंगे, नहीं करोगे तो ज्ञान के नेत्र जहां के तहां जैसे बंद होते हैं बंद रहेंगे। इसलिए यहां से शुरू करो, सबसे पहले सूर्य देवता को देखो, फिर देखो दूसरे प्रकार से आप प्रश्न लगाते हैं कि सूर्य देवता जो हमारे नेत्रों में जो दिखाई देता है वो सूर्य देवता की कृपा से दिखाई देता है, हमारे नेत्रों का जो अधिष्ठात्र देवता है वही सूर्य देवता है, जो सूर्य देवता आकाश में स्थित सूर्य में स्थित है वही देवता समस्त प्राणियों के नेत्रों में भी स्थित, हमारे आंख में भी सूर्य देवता है। आप कहोगे सूर्य देवता कितने हैं, देवता की महिमा ये है कि वो एक होते हुए भी अनेक होता है। तो जितने चाहे उतने सही धारण कर ले, जितने चाहे उतने रूप धारण कर ले, ये देवता की महिमा है। इसलिए वो हमारे नेत्र में ही विद्यमान है, सबके नेत्रों में विद्यमान है, वही सूर्य देवता। जब वो सूर्य देवता के ही बल से नेत्र कार्य करते हैं और दिखाई देता है, तो एक तो है नेत्र और एक है नेत्र तो आधिभौतिक हो गए। अब नेत्र में जो देवता है सूर्य देवता, वो आधिदैविक हो गया, और उसके बाद में आधिदैविक देवता को प्रकाशित करने वाला परमात्मा हमारे अंदर भी विद्यमान है। वही परमात्मा की चेतना नेत्र में सूर्य देवता होकर के विद्यमान है। ये भी उपासना, ये जो यहाँ पर जैसा भगवान ने बोला, इसको दोनों प्रकार से उपासना बना सकते हैं। और उपनिषदों में दोनों प्रकार से इस प्रकार की उपासना का वर्णन भी है। उपनिषदों में सूर्य उपासना का खुद वर्णन है, सूर्य उपासना उपासना अनेक प्रकार के उसमें वर्णन है, सूर्य उपासना भी है। इसलिए कहते हैं विदादित्य गतम तेजो जगत भाषा ते कि नम, और फिर यश चंद्रमा थी, और चंद्रमा में भी जो चंद्रदेव है उसका भी प्रकाश वही परमात्मा है। यश अग्नव अग्नि में जो अग्नि देवता है वो अग्नि देवता भी वही परमात्मा का रूप है। तब तेजो बुद्धि मामकम, मामकम तेजाविद्धि, मेरे ही तेज को समझो। अब भगवान बोल रहे हैं वो परब्रह्म परमात्मा, वो कहता है कि मैं ही सूर्य में सूर्य देवता हूँ, मैं ही चंद्रमा में चंद्रदेव हूँ, मैं ही अग्नि में अग्निदेव हूँ। तो मैंने उस परमात्मा में तो एकत्व है, लेकिन उसी ने इतने देवताओं का रूप धारण किया हुआ है। आपको यही पता चल जाएगा कि भारतवर्ष में अनेक देवता क्यों है, सूर्य देवता की पूजा क्यों की जाती है, दूसरे लोग जिनको की दूसरे संप्रदाय वालों के जिनको भी इसका रहस्य पता नहीं है, वो गोबर भाला मचाते हैं, लोगों में भ्रांति पैदा करते हैं, हल्ला गुल्ला मचाते हैं, अरे साहब इनको क्या कहने, इनके हजारों ईश्वर हैं, इनके हजारों परमात्मा हैं, इनके लाखों परमात्मा हैं, इनका कोई ठिकाना नहीं, ऐसे करके उनकी सीधी बात नहीं बनती। उन्हें ये पता नहीं कि जितना की परमात्मा के एकत्व का निश्चय भारत में है उतना कहीं दुनिया में नहीं। भारतवर्ष में तो यहाँ तक है कि एक परमात्मा ही है, परमात्मा से तो और कहीं दूसरा है ही नहीं कुछ, न कहीं देवता, न कहीं सृष्टि, न कहीं जीव, न कहीं कुछ, एकमात्र परमात्मा ही ऐसा दुनिया है कहीं कोई। और ऐसा जो नहीं है वो क्या सारे कहेंगे कि भारतवर्ष में जाना एक हजार देवता, वो क्या जाना क्या होते हैं, कितने देवता क्या कहते हैं, खाम खां के जो है वो हो अज्ञानी लोग उल्टी सीधी बातें बोलते रहे। इस प्रकार से देखो ये है वही एक परमात्मा सूर्य देवता है, वही चंद्र देवता है, और वही अग्नि देवता है। उदाहरण के लिए देखो, अगर बिजली ये बोले कि देखो मैं ही पंखा चला रहे हूँ, मैं ही बल्ब में प्रकाश दे रहे हूँ, मैं ही तुम्हारे फ्रिज को ठंडा कर रहे हूँ, मैं ही तुम्हारे हीटर को गर्म कर रहे हूँ, तो इसके माने क्या, आप पागल समझो वैसे, इसमें गलती क्या है, सही बात है। इसी प्रकार से परमात्मा एक होकर के इन सब में स्थित है, और सब में चेतन शक्ति ज्ञान शक्ति सबको प्रदान कर रहा है, सबको सत्ता प्रदान कर रहा है, सबको चेतना प्रदान कर रहा है। इस प्रकार से वो परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है। इसलिए उपासना करो, सूर्य को देखो तो सूर्य में परमात्मा तक अपनी बुद्धि को ले जाओ, चंद्रमा को देखो तो चंद्रमा को देख करके अपनी बुद्धि को परमात्मा तक ले जाओ, अग्नि को देखो तो अग्नि को देख करके अपनी बुद्धि को परमात्मा तक ले जाओ। प्रकार से जहाँ कहीं भी हो तहाँ इनके सत्य मूल विद्यमान परमात्मा को देखो। अब उदाहरण में जैसे लोग अज्ञानी व्यक्ति कोई बिल्कुल हो वो कहकर देखो पंखा बड़ा अच्छा है, बड़ा बढ़िया चलता है, लेकिन अब उसको उसका ध्यान बिजली की तरफ अगर नहीं जाता तो उसमें समझता कि पंखा ही बहुत अच्छा है, पंखा ही बहुत बढ़िया चल रहा है, बस उसके आगे नहीं सोचता। लेकिन जो बिजली का जिसने परीक्षा पास की होगी, बिजली को जो जानता होगा, इलेक्ट्रीशियन होगा, इलेक्ट्रिक इंजीनियर होगा, वो तो जानता होगा कि वो बिजली यहाँ है और उसी कारण से पंखा घूम रहा है। उसको ये भी मालूम होगा कि बिजली यहाँ से कहाँ से आ गई, कोई कहे बिजली कहाँ आ गई, तो उसको इंजीनियर को मालूम है कि चाहे यहाँ से 10 किलोमीटर के दूर के ऊपर कहीं बिजली बन रही हो लेकिन तार के द्वारा वहां से यहाँ आ जाती है। तो जब वहां हो यहाँ कैसे आ गई और कहाँ दिखाई देती आती हुई दिखाओ, तो यह तो सब बेकार की बात है। जो देखने वाले देखते हैं कि कहां बिजली कैसे बन रही है, कहां बिजली आ रही है, कहां बिजली कार्य कर रही है, जिनके ज्ञान दृष्टि उदय हुई उनको सब दिखाई देता है। इसी प्रकार जिनको ज्ञान दृष्टि उदय हुई उनको दिखाई देता परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है, वही परमात्मा सूर्य देवता है, वही परमात्मा चंद्र देवता है, वही परमात्मा जो है अग्नि देवता है। यहाँ पृथ्वी के लोग कुछ लोग चंद्रमा पर पहुंच गए और चंद्रमा ऊपर जब पहुंच गए तो लोगों ने बड़ी हाय मचाई, अरे चंद्रमा को गंदा कर दिया, हमारा चंद्र देवता बड़ा पवित्र था उसको और मनुष्यों ने जाकर पैर रख दिया, ये भी कोई बात है? अरे वो समझते थे चंद्रमा ही देवता है, सूर्य ही देवता, पृथ्वी देवता नहीं है क्या? आगे चल करके देखो आप भगवान कहेंगे गामा ऋषि तो भूटान पृथ्वी की भूटा भी तो मैं घुसा, आप उसके ऊपर खड़े होते नहीं, धमाधम उसके ऊपर कुत्ते भी नहीं कुत्ते, परमात्मा क्या बगड़ता? इसलिए वही परमात्मा का चंद्रदेव बना हुआ वहां बैठा हुआ ध्यान करा आपको दो, आपको चंद्रमा क्या बिगड़ता है या परमात्मा का क्या बिगड़ता है? इसलिए इस प्रकार से इसमें देखो कि चंद्रदेव क्या है, तात्पर्य क्या है।